आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बहुत से रेलवे प्रोजेक्टों के साथ साथ नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत में सेहत और तंदुरुस्ती की आलमी राजधानी बनने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है और हील इन इंडिया जल्द ही एक मंत्र बन जाएगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज नई दिल्ली में अमरीका के अपने हमनसब जेक सलिवन से मुलाकात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप के तहत तीसरे मरहले की बंदिशें खत्म कर दी गई हैं क्योंकि हवा की क्वालिटी में बेहतरी आई है। शिमाली भारत में तेज सर्दी जारी है और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने यूपी रुद्रास को 2-0 से जबकि सूरमा हॉकी क्लब ने वेदांत कलिंगा लेंसर्स को 4-3 से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे और रेलवे के कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। खित्ते में रेल राब्ते को मजीद मुस्तहकम करने के एक अहम कदम के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना में नए चारलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का भी इफ्तिताह करेंगे और ईस्ट कोस्ट रेलवे की रायगढ़ रेलवे डिवीजन की इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
जम्मू रेलवे डिवीजन की तश्कील से जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को काफी फायदा होगा। इससे लोगों के आरजुओं की तकमील हो सकेगी जिसकी तमन्ना वो वर्षों से कर रहे थे। जम्मू रेलवे डिवीजन पठानकोट जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला भागपुर सिरवाल पठानकोट और पठानकोट जैसे जोगिंद्रनगर सेक्शन पर मुश्तमिल होगा। इस रेलवे डिवीजन की तश्कील से रोजगार के मौके पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे की तरक्की और सियाहत को फरोग हासिल होगा। नीज खित्ते की हमाजह समाजी और इक्तसादी तरक्की की राह हमवार होगी। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
नामनिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बेहद फख्र और खुशी की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नए तश्कील करदा जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि तवील अरसे से इसका मुतालबा किया जा रहा था।
सबके लिए बड़ी गर्व और हर्ष की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा आवेदन स्वीकार करते हुए जम्मू को एक अलग से रेलवे डिवीजन के तौर पर नए साल का तोहफा देने का निर्णय लिया है और जिसकी बहुत समय से मांग भी थी और आवश्यकता भी थी। अभी इतना फैलाव हो गया रेलगाड़ी का कि कामकाज में भी वृद्धि हुई है, प्रशासनिक तरीके से भी, तकनीकी ढंग से भी, और इसकी एक आवश्यकता भी थी।
जम्मू कश्मीर में रेलवे के महकमे ने कतई मुआयने से पहले हफ्ते के रोज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के पूरे कटरा बानिहाल सेक्शन पर ट्रेन की कामयाब आजमाइश की। इसके बाद कल और 8 जनवरी को रेलवे हिफाजत के कमिश्नर इस रास्ते पर इस ट्रेन को चलाए जाने का कतई मुआयना करेंगे ताकि कश्मीर के लिए ये रेल खिदमात शुरू की जा सके। रेलवे के महकमे ने अभी तक मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की 6 आजमाइशें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के इलाके रोहिणी में आयुर्वेद तहकीक के मरकजी इदारे की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। ये जदीद तरीन तर्ज की इमारत तकरीबन 185 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। 2.92 एकड़ जमीन पर तामीर की जाने वाली इस इमारत में रिवायती और इख्तराई दोनों तरह की खसूसियात मौजूद होंगी जिससे भरपूर इलाज के नए मौके फराहम होंगे। इस इमारत में खसूसी क्लिनिक्स होंगे और हुनरमंदी को फरोग दिया जाएगा। जनाब मोदी ने अपने खिताब में हिफ्जान सेहत की सहूलियात गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने पर हुकूमत की तवज्जो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आयुष और आयुर्वेद जैसे रिवायती भारतीय तरीके इलाज को भी फरोग दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछली दहाई में आयुष निजाम 100 से ज्यादा मुल्कों में फैला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में सेहत और तंदुरुस्ती की आलमी राजधानी बनने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया मेक इन इंडिया की तरह हील इन इंडिया को भी एक मंत्र के तौर पर इख्तियार कर लेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल जाती आदादोशुमार के तहफ्फुज DPDP से मुतालिक 2025 के जाब्तों के मुसवदे में शहरियों को इलाज से पहले इलाज के खतरात के बारे में बताकर उनकी रजामंदी हासिल करने, आदादोशुमार को खत्म किए जाने और डिजिटल वसीले से वारसीन को नामजद करने जैसे हुकूक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब शहरी आदाद और शुमार को गैर मजाज तौर पर इस्तेमाल करने या इस सिलसिले में किसी तरह की खिलाफवर्जी के बारे में खुद को बेसहारा महसूस नहीं करेंगे। جناب ویشنو نے ایک مضمون میں کہا ہے کہ شہری اپنے ڈیجیٹل شناخت کا مؤثر طور پر تحفظ اور بندوبست کرنے کے اہل ہوں گے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کی ڈیجیٹل معیشت کامیابی کی ایک عالمی داستان بن گئی ہے اور حکومت اس پیش رفت کو برقرار رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہے. اسٹیل کے مرکزی وزیر ایچ ڈی کمار سوامی آج نئی دلی کے وگیان بھون میں اسٹیل صنعت کے لیے پی ایل آئی اسکیم 1.1 شروع کریں گے. وزارت اس تقریب کے دوران درخواستیں بھی طلب کرے گی. اسٹیل کی وزارت نے بتایا کہ وزارت کی پی ایل آئی اسکیم کی وجہ سے تقریباً 27,000 کروڑ روپے کے سرمایہ کی آمد ہوئی ہے اور براہ راست روزگار کے 14,000 سے زیادہ موقع فراہم ہوئے ہیں. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج نئی دلی میں امریکہ کے اپنے ہم منصب جیک سلیون سے ملاقات کریں گے. دونوں شخصیتوں کے درمیان وسیع بات چیت ہوگی جس میں اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی آئی سی ای ٹی اور دیگر دو طرفہ معاملات بھی شامل ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پچھلے ہفتے نامہ نگاروں کو بتایا تھا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات وسیع ہیں اور تفصیلی بات چیت جاری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ موجودہ امریکی انتظامیہ کی مدت ختم ہونے والی ہے لیکن تعلقات کی یہ مضبوطی اس مدت کے دوران اس طرح کے باہم تبادلوں اور ایک دوسرے کے ملکوں کے دوروں سے ظاہر ہوتی ہے. جناب سلیون اپنے دورے میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کریں گے. وہ دلی کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا دورہ بھی کریں گے. ہوا کے معیار کے بندوبست کے کمیشن سی اے کیو ایم نے قومی راجدھانی خطے میں مرحلے وار کارروائی کے ایکشن پلان گریپ کے تحت نافذ تیسرے مرحلے کی بندشیں ختم کر دی ہیں. ایک رپورٹ.
ہوا کے معیار کے بندوبست کے کمیشن سی اے کیو ایم نے پورے دلی این سی آر میں مرحلے وار کارروائی ایکشن پلان گریپ کے تحت نافذ کردہ تیسرے مرحلے کی بندشوں کو کل ختم کر دیا. یہ فیصلہ قومی راجدھانی خطے میں ہوا کے معیار میں بہتری آنے کے بعد کیا گیا ہے. آلودگی کو کنٹرول کرنے سے متعلق مرکزی بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق آج صبح قومی راجدھانی میں ہوا کی کوالٹی کا اشاریہ اے کیو آئی 316 ریکارڈ کیا گیا. کمیشن نے مزید کہا کہ مرحلہ 1 اور 2 کے تحت تمام ضابطے نافذ رہیں گے. کمیشن نے دلی این سی آر میں ہوا کے خراب ہوتے ہوئے معیار کے پیش نظر اس مہینے کی 3 تاریخ کو مرحلے وار کارروائی ایکشن پلان گریپ کے تیسرے مرحلے کو نافذ کیا تھا. پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
سری نگر سمیت کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں کل تازہ برف باری ہوئی اور وادی میں لگاتار تیسرے دن منجمد کر دینے والی سردی کا سلسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے وادی میں معمول کی زندگی پر اثر پڑا. محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جموں کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں آج دوپہر تک ہلکی سے اوسط برفباری کا امکان ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیر خطے میں آج بعد دوپہر موسم میں بہتری آ جائے گی. حکام نے کشمیر خطے کی اہم اور رابطہ سڑکوں پر جمی ہوئی برف کو ہٹانے کے لیے عملے اور مشینوں کو کام پر لگا دیا ہے. ایک رپورٹ.
بانہال اور قاضی گنڈ کے درمیان شدید برف باری اور پھسلن کی وجہ سے سری نگر جموں قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہے. سری نگر کرگل سڑک بھی ٹریفک کے لیے بند ہے. جموں خطے کے راجوری اور پونچھ اضلاع کو ملانے والا مغل روڈ برف باری کی وجہ سے مسلسل 9 روز بھی بند ہے. انتظامیہ نے عوام سیاحوں اور ٹرانسپورٹروں پر زور دیا ہے کہ وہ ہر قسم کے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. طارق راتر, آکاشوانی, سری نگر.
شمالی بھارت میں شدید سردی جاری ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جموں کشمیر, لداخ, گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں آئندہ 4-5 دن کے دوران درجہ حرارت میں 4 سے 5 ڈگری سیلسیس بتدریج کمی کا امکان ہے. محکمہ نے آج ہماچل پردیش کے الگ الگ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. پنجاب, ہریانہ, چنڈی گڑھ, دلی, اتر پردیش, راجستھان, مغربی بنگال, سکم, بہار, جھارکھنڈ اور شمال مشرقی علاقوں میں اگلے 2 دن تک صبح اور رات کے وقت گھنا کوہرا چھائے رہنے کا امکان ہے. محکمہ نے بتایا کہ شمال مغربی وسطی اور مغربی بھارت میں اگلے 3-4 دن کے دوران کم سے کم درجہ حرارت میں کوئی خاص کمی نہیں آئے گی. اتر پردیش کے مقدس شہر پریاگ راج میں اس مہینے شروع ہونے والے مہا کمبھ میلے کے لیے سیکیورٹی بندوبست پختہ کر دیا گیا ہے. پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے میں تقریباً 40 کروڑ افراد کے آنے کا امکان ہے. प्रयागराज में गंगा जमुना और सरस्वती दरियाओं के संगम पर इस महीने की 13 तारीख से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला मुनक्कद किया जा रहा है। अकीदतमंदों की सिक्योरिटी और सलामती के लिए गंगा और जमुना दरियाओं में बड़ी तादाद में जल पुलिस के अहलकार तैनात किए गए हैं। भारतीय रेलवेज ने मेले के दौरान अकीदतमंदों के लिए 13,000 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने फुलवारी शरीफ PFI दहशतगर्दी माली एयानत मॉड्यूल के मामले के एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। यह मामला ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारिंदों के बिहार में गैर कानूनी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने से मुतालिक है। NIA ने मोहम्मद सज्जाद आलम को कौमी राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अलाकवामी हवाई अड्डे पर कल गिरफ्तार किया था। वो दुबई से यहां पहुंचा था। NIA ने कहा है कि सज्जाद आलम बिहार के मशरकी चंपारण जिले का रहने वाला है और PFI का एक तरबियत याफ्ता कारिंदा है। NIA की तहकीकात के मुताबिक मुलजिम PFI की मुजरिमाना और गैर कानूनी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए दुबई से कर्नाटक और केरला में कायम गिरोह के जरिए बिहार में PFI के कारिंदों को गैर कानूनी फंड फराहम करने में मुलव्वस था। पंजाब के गवर्नर और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो गुरुजी के मुकर्रर करदा मकासिद और नजरियात के लिए खुद को वक्फ कर दें। दिल्ली के सेहत हुकाम ने कल ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस और सांस से मुतालिक दीगर वायरस से मुंसलिक मुमकिना सेहत चैलेंजों के लिए तैयारी को यकीनी बनाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि वो मरबूत सेहत मालूमाती प्लेटफॉर्म IHIP पोर्टल के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस से मुतालिक इन्फेक्शन के बारे में फौरी रिपोर्ट करें। चीन में सांस लेने में दुश्वारी पेश आने के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र ये एडवाइजरी जारी की गई है। हॉकी इंडिया लीग में कल रात ओडिशा के राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने UP रुद्रास को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। तमिलनाडु ड्रैगन्स की तरफ से अभारन सुदेव और थॉमस सॉर्सबी ने गोल किए। इस जीत के साथ तमिलनाडु ड्रैगन्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। हॉकी इंडिया लीग के आज के मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली SG पाइपर से होगा। ये मैच रात 8:15 बजे खेला जाएगा। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल रात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केरला ब्लास्टर्स ने पंजाब FC को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफे अवल पर जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अवामी बहबूद की तमाम स्कीमों को जारी रखा जाएगा और बदउनवानी को रोका जाएगा। रोजनामा इनकलाब ने योम जमहूरिया की मुनासबत से दिल्ली कैंट में मुनाकिदा NCC कैंप में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें उन्होंने समाजी रवादारी और गुनागुनियत को कौमी इत्तेहाद के लिए बेहद जरूरी करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने आइंदा मुनक़िद होने वाले पंचायत से पार्लियामेंट तक के प्रोग्राम और कबायली ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने की हुकूमती पहल को उजागर किया है।
और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बहुत से रेलवे प्रोजेक्टों के साथ साथ नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत में सेहत और तंदुरुस्ती की आलमी राजधानी बनने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है और हील इन इंडिया जल्द ही एक मंत्र बन जाएगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल आज नई दिल्ली में अमेरिका के अपने हममनसब जेक सलिवन से मुलाकात करेंगे। दिल्ली NCR में ग्रैप के तहत तीसरे मरहले की बंदिशें खत्म कर दी गई हैं, क्योंकि हवा की क्वालिटी में बेहतरी आई है। शिमाली भारत में तेज सर्दी का सिलसिला जारी है। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने UP रुद्रास को 2-0 से, जबकि सूरमा हॉकी क्लब ने वेदान कलिंगा लेंसर्स को 4-3 से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।